તારીખ 17/2/1989, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 106 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 91.
इस बोल में ज्ञान की ज्ञान दशा का विषय चला है। दृष्टि सम्यक होने से अनंत गुण के यथासंभव परिणाम शुद्ध परिणाम होने लगते हैं। ऐसी अनंत गुणवान दशाएं हैं, बहुत सी बातें तो वचन गोचर भी नहीं है, फिर भी ज्ञान दशा के बहुत से पहलू शास्त्र में प्रसिद्ध है, आगम में प्रसिद्ध है। ये इसलिए दर्शाया जाता है कि ज्ञान की पहचान हो सके। आगे अविरत समय दृष्टि ज्ञान होते हैं, उनकी पहचान होनी सबसे ज्यादा कठिन है। बाह्य में जो अंतर बाह्य निर्ग्रंथ है उनको तो आसानी से समझ सकते हैं कि ये धर्मात्मा ही है। सर्वज्ञ वितराग के परमेश्वर जो है इनकी भी पहचान इससे भी आसान है, क्योंकि उनको तो चौथे अतिशय सहित दिवित होने चलती है। वहां दो जगह शंका की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये दोनों का योग बहुत दुर्लभ है। जितना योग अविरत समय दृष्टि का होता है उतना नहीं होता है, क्योंकि संख्या भी उतनी कम है उनकी। समय दृष्टि से मुनि कम होते हैं, मुनि से केवल कम होते हैं। समय सार के निर्जराधिकार में ये सारा विषय चला है कि समय दृष्टि अविरत होने पर भी उनको निर्जरा है, सप्त भय रहित है और अष्ट गुण सहित है। मूल गुण में से आठ गुण दिए हैं, तो ऐसा पहचान करवाने के हिसाब से ये विषय चला है आगम में। ये विषय चलाने के पीछे जो कोई हेतु है वो यह है, दृष्टि का विषय द्रव्य स्वभाव है, दृष्टि का विषय अपने आत्मा में जो अनंत गुण त्रिकाल एक रूप रहते हैं, जिसको एक शब्द में मात्र स्वभाव कह सकते हैं, है तो अनंत गुण, फिर भी अनंत का भेद नहीं देखना है। अभेद एक स्वरूप से अनंत को देखना है तो स्वभाव कहते हैं, सिर्फ एक शब्द में सब आ जाता है। जैसा सोना ऐसा कहने से स्वर्ण, स्वर्ण के सभी गुण इसमें नाम मात्र से, वैसे स्वभाव के भी बहुत नाम है, किसी न किसी नाम से कहें तो पूरा स्वभाव अनंत गुण का एक रूप समझ लेना चाहिए। ये दृष्टि मैंने श्रद्धांत का ये विषय है, दृढ़ स्वभाव का अस्तित्व ये दृष्टि का विषय है, ये श्रद्धांत का विषय है। इसमें तो अशुद्धता की उत्पत्ति है ही नहीं, ऐसे त्रिकालीय स्वभाव में इसको ध्रुव कहते हैं, परम परिणामिक भाव कहते हैं, कारण परमात्मा कहते हैं, ज्ञायक भाव कहते हैं, इसलिए तो अशुद्धता की उत्पत्ति है ही नहीं। यानी इसमें तो कोई उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं, उत्पाद ही नहीं है, व्यय भी नहीं है, तो उत्पाद व्यय से निरपेक्ष है। जो गुण भेद से निरपेक्ष हो उसको उत्पाद व्यय की तो अपेक्षा लगाना बहुत दूर की बात है, जिसमें गुण भेद की भी अपेक्षा नहीं लागू होती है, इससे भी वो परे है, निरपेक्ष है, उसमें उत्पाद व्यय का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर शुद्ध अशुद्ध की बात तो बाद की रही, उत्पाद होवे तो उसमें अशुद्धि का उत्पाद होवे ये चर्चा चल सकती है, लेकिन जिसमें उत्पाद ही नहीं उसमें शुद्ध अशुद्ध का तो कोई सवाल पैदा
नहीं होता,
इसलिए उसमें शुद्धता की उत्पत्ति तो है ही नहीं। संकृति को यानी समूल दृष्टि को किसी भी अपेक्षा से, एक भी अपेक्षा से, अनंत संसार के कारण ऐसा जो मिथ्या को और अनंतानुमति कषाय उसका बंध नहीं है। 41 प्रकृति का बंध का विच्छेद हो गया है समूल दर्शन होने पर। 120 में से 148 में तो जो कुछ है उनका तो 44 तो नाम कर्म के पेटा में आते हैं, लेकिन प्रथम ही धर्म के प्रारंभ में 41 प्रकृति का बंध के विच्छेद बुला दिया। मैंने 120 दुश्मन थे उसमें एक तृतीयांश को खत्म किया था दर्शन होते, उसमें भी ये दर्शन विख्यात प्रकृति और अनंतानुमति दशा, ये तो सबसे बड़े जोर वाले और जीव का अनंत अहित करने वाला, अनंत दुख पहुंचाने वाला, अनंत दुख में विनित होने वाला, अनंत जन्म मरण होने वाला, सारे सैन्य का राजा कोई है तो ये है। मोक्ष मार्ग में समीर दृष्टि की अवस्था तारतम्य भेद से जघन्य गिनी जाती है, ये तो पहली सीढ़ी 14 स्थान में ये पहली सीढ़ी और जघन्य है, फिर भी इसका इतना महत्व क्यों, यही कारण है इसके पीछे कि ये राजा को मारता है। सारा जो सिंह है अनंत कर्म का उसमें जो राजा है उसको वो मार डालता है, तो फिर तो सारा कब्जा हो गया पूरी राजधानी पर, सैन्य है वो कब्जे में आ जाता है और छोटे मोटे सब बात का कब्जा हो जाता है।
पहली कक्षा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो बहुत पहली कक्षा इम्पोर्टेंट है,
बाकी तो सब और वैसे ही हर हर जगह स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट। एक आदमी को कोई भी पूंजी हो गए किसी भी प्रकार के और उसको कमाई बड़ी करनी हो गए, मुझे तो करोड़पति अरबपति होना है, तो उनके लिए पहला 10,000 जो कमाना है जो परिश्रम है वो परिश्रम फिर 10,000 के बाद आगे नहीं है। करोड़ कमाने में इतना परिश्रम नहीं है जितना पहला 10,000 कमाने में परिश्रम लगता है। पैसे में ही कोई साधन नहीं है, कैसे आगे बढ़े? ऐसे अनादि मिथ्या दृष्टि, विपरीत मान्यता, विपरीत ज्ञान, विपरीत पुरुषार्थ, विपरीत आचरण और दुख में गिरा हुआ पड़ा है, इस सब विप्रयास में गिरा हुआ पड़ा है, उसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन है। इसलिए अनंत संसार उठता है, अनंत संसार का यही कारण। फिर भी ऐसा असंभव नहीं है तो निकल जाते हैं निकलने वाले। जिसको एक ही लक्ष्य हो कि मुझे संसार से छूटना है जैसे कैसे भी, वो छूट सकता है। कौन छूट सकता है? कि जिसको एक लक्ष्य हो गया, एक ध्येय हो गया, एक ही निशाना हो गया कि ये काम कर लेना है, वो छूट सकता है, दूसरा नहीं छूट सकता उसे। ये बात जरूर
चाहिए
सभी भी से ऐसा ही है, फिर भी वो सहज है। वो तो तारतम्यता बताई कि 10,000 से करोड़ कितना गुना, कि 10,000 से 10 को गुना तो लाख हो गए, और लाख को फिर 100 को गुना होने फिर 1 करोड़ हो गए। तो इसमें तो जो अंतर है वो तो है ही, वो तो अंतर दिखाया सब बराबर है, फिर भी वो आसान है। क्या क्योंकि ये सहज होती है। सम्यक दर्शन से आगे मोक्ष मार्ग के ऊपर ऊपर के जो गुण स्थान है वो सहज आ ही जाता है, आए बिना नहीं रहता। सहज ही ऑटोमेटिक दशा चलती है। एक तो कर्तृत्व खत्म हुआ तो कृत्रिमता खत्म हुई, कृत्रिमता खत्म हुई तो सहज ही इनकी कोई ऐसी परिणाम स्वभाव की स्थिति हो जाती है। उसका द्रव्य ही मुझे ऐसे समझ में देते हैं, उसका द्रव्य ही शुद्धत्व परिणामशील हो गया है। उसका द्रव्य ही ऐसा हो गया है
ऑटोमेटिक।
हाँ ऑटोमेटिक जैसे अभी अपन को कोई पूछे कि आप हर समय मिथ्यात्व को नया नया पैदा करते हो, क्या पुरुषार्थ करते हो? उनका पुरुषार्थ तो लगाएगी इसमें, सहज होता है कि नहीं होता है? ऑटोमेटिक होता है। वैसा ही ये परिणाम का एक धरन हो जाता है, बलन हो जाता है कि सहज रूप से शुद्ध रूप परिणाम करता है। और हालांकि उसमें पुरुषार्थ नहीं है, वो बात नहीं, पुरुषार्थ तो है ही लेकिन सहज है उतना, तो वो क्रमशः आगे बढ़ता जाता है। उसमें जो अंतर है उसमें चारित्र का आनंद पुरुषार्थ है, सो बात ठीक है। फिर भी जो दिक्कत सम्यक दर्शन प्राप्त करने में है उतनी दिक्कत वहां जा रही है, क्योंकि वहां उनको उनका नजर तो साफ है, मेरा हित कहाँ है मेरा अहित कहाँ है वो बिल्कुल जानता है। शुभ शुभ परिणाम होते हैं बिल्कुल उनका निषेध आता है, धक्का देता है, नहीं मैं ये नहीं, मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इसमें नहीं। जागृत दशा है, चैतन्य की सम्यक ज्ञान ज्योति चलती है, निरंतर ज्ञान की ज्योति चालू है, उनको तो कोई सवाल नहीं। पुरुषार्थ की कितनी वृद्धि होती है कितना दिख लाया, लेकिन जो बिल्कुल अंधा है जन्मांध है उनको नेत्र मिलना ज्यादा विशेष बात है।
कमाने की कला आ गई।
हाँ
माता जी को बताना
तीसरा बोले, तीसरा
बोले
फिर तो धन रहे तो ढगला था, हमारे गुजराती मके पछे पंड रड़े तो पेट भराए, धन रड़े तो ढगला थाय। कहावत है पंड मैंने अपना शरीर से कोई परिश्रम मजदूरी करता है तो पेट भरता है, साथ सारा दिन मजदूरी करे तो उसको पेट भरने के अलावा कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन जो लाखों रुपया लगा करके बड़ा बिजनेस करता है उसको तो बहुत पैसा मिलता है। ऐसे तो पुरुषार्थ भूमि दर्शन के बाद तो जो निर्जरा है वो गुण श्रेणी निर्जरा है, गुण मेरे मल्टीप्लीकेशन दुगुणा चार गुणा तो असंख्य गुणी निर्जरा होती है, एक गुण नहीं होती है, दो गुण नहीं होती है, असंख्य गुण निर्जरा होती है। लेकिन समय दृष्टि को भी निर्जरा तो है ही, ये तो निर्जरा अधिकारी इसलिए लिखा
तो है,
गुण श्रेणी तो पंचम गुण स्थान से स्थिरता बढ़ती है। सही बात है, उसी वक्त अनंतानुबंधि जाए, दोनों एक साथ है, एक ही समय में सम्यक दर्शन का उत्पाद और मिथ्यात्व और अनंतानुबंधि का
व्यय
एक साथ है, एक ही समय में, दूसरा समय नहीं है, पहले वो जाए और पीछे आए वो भी नहीं, पहले ये आवे तो पीछे वो जाए वो भी नहीं, एक ही समय में
वही समय।
जिस काल में प्रकाश होवे उसी काल में अंधेरा का नाश,
बराबर,
और जिस काल में अंधेरा का नाश उसी काल में प्रकाश का सद्भाव होता है, उत्पाद होता है, एक ही काल में
जी,
दूसरा समय नहीं। संकृति को सम्यक दृष्टि को एक भी अपेक्षा से या किसी भी अपेक्षा से अनंत संसार का कारण रूप ऐसा मिथ्यात्व और अनंतानुबंधि कषाय का बंधन नहीं होता, ऐसा मन कभी उसको पड़ता
नहीं।
फिर भी इस ऐसे कोई मान ले, ऐसा कहने से कोई ऐसा मान ले कि उनको बिल्कुल विभाव होता ही नहीं है तो एकांत है, ऐसा नहीं, ये तो जघन्य दशा है। अगर एक समय दृष्टि है तो उनको दूसरे दूसरे जो करते हैं उनका तो उनको मैंने प्रत्याख्यान वर्णी और संजलन बार तो ये कषाय रह गए मुख्य तो इनके बंद होते हैं, लेकिन शास्त्र में ऐसे वचन आता है कि सम्यक दृष्टि है वो बंद है, सम्यक दृष्टि को बंद होता
नहीं,
नहीं। समय साथ नहीं है, तो इसका ये कारण है कि उसको अनंत संसार में परिभ्रमण होवे ऐसी प्रकृति का कोई बंध उसमें
नहीं है,
नहीं होता
आदि,
उतनी बात है नहीं की। वैसे समय दृष्टि सुखी है ऐसा कहने में आता है, उसको दुख होता ही नहीं, ये तो नरक में पूर्व कर्म के हिसाब से आ गया तो भी वहां भी अंतर सुख रस गता गति, तो कोई ऐसा समझ ले कि उनको दुख होता ही नहीं, ऐसी बात नहीं। तो ये कहा तो उपयोग देव गुरु शास्त्र के प्रति बाहर निकले तो भी उसको पट्टी जैसा दुख लगता है, ये बात जो है वो तो एक और से ये कहें कि उनको दुख है ही नहीं, एकांत सुखी हो गया, जोर देने की बात है, यानी शुद्धत्व परिणमन सुख का परिणमन वो बलवान परिणमन है, दो अंश है परिणमन में शुद्धता और अशुद्धता, जो शुद्धता का अंश है वो बलवान है और बलवान होने से अशुद्धता की पराजय होती है, तो अपने आप में निर्बल होता हुआ हुआ खत्म हो जाता है, निर्बल होता जाता है और आखिर में वो खत्म हो जाता है, यही हालत अशुद्ध अंश की है, लेकिन है ही नहीं ये बात नहीं है, तो मुख्यता बताने से हिसाब से इतना गौण कर देगा कि है ही नहीं। जैसे लाखों कमाने वाले को कहीं लोन लिया हो बैंक के तो ब्याज भी देना पड़े तो उतना तो नुकसान है कि नहीं है, तो ये कमाने के लिए लोन लिया था, उसमें नुकसान नहीं गिना जाता, जो कमाया है वो लाभ ही गिना जाता है। यानी टोटल क्या है यही देखने में आता है।
इस तथा के अंश का वेदन निर्विकल तत्व भी उसके कारण नहीं होता है।
जो भी पशु रूपयुग के काल में भी वेदन है, जिसको ज्ञान धारा कही, बनारसीदास जी ने ज्ञान धारा और कर्म धारा ऐसे दो बात दो शब्द के प्रयोग किए, और पंचाध्याय में उसको ज्ञान चेतना कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दो ही होती है, और सम्यक दृष्टि को ज्ञान चेतना ही होती है, सम्यक दर्शन
चेतना ही होती है,
ज्ञान चेतना ही होती है, उसको कर्म चेतना गिनी नहीं जाती, अंतानुबंधि और मिथ्यात्म नहीं है तो अल्पबंध को गिनते नहीं, इसलिए उसको कर्म चेतना नहीं गिनते, उसको ज्ञान चेतना होती है प्रधान रूप से। यह तो क्या शुद्धोपयोग उनको सदा चलता है, निरंतर तो नहीं चलता, कभी कभी आता है, तो दूसरे काल में उसको ज्ञान चेतना चलती है, और ज्ञान चेतना का वेदन भी है, सुख है तो सुख का वेदन भी है,
अतिंद्रिय आनंद का वेदन।
हाँ अतिंद्रिय
वो अतिंद्रिय भक्ति जैसा लगता है, देवगुरु शास्त्र के उपयोग।
हाँ तो वो दूसरा अंश है, वो दूसरा अंश है, ऐसा है कि दृष्टि तो पूरी की पूरी अंदर में आ गई, दृष्टि तो
उसमें तो फर्क पड़ता ही,
वो तो अपने आप को भी स्वीकार नहीं करती, ज्ञान चेतना को स्वीकार नहीं करती, केवल ज्ञान को भी वो स्वीकार नहीं करती, उनका विषय तो केवल द्रव्य स्वभाव है, तो पूरी की पूरी वो द्रव्य स्वभाव के साथ जुड़ी हुई है, चिपकी हुई है। अब दूसरे गुण का विचार करें तो ज्ञान में दो भाव हो गए हैं, जो उपयोग है वो बाहर जाता है और लब्ध है वो अंदर में, जो स्वभाव के साथ चिपका हुआ दो भाव हो गया। गुरुदेव दो भाग भी कहते थे, लेकिन एक समय में दो भाग समय का नहीं होता है, इसलिए भाव का दो भाग हुआ है,
समय का नहीं है, भाव का,
भाव का है।
जैसे चारित्र की परिणाम होता है,
ऐसे ही ज्ञान में होता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में होता है, ऐसे ही सुख में होता है, दूसरे दूसरे गुण में ऐसा ही होता है, क्योंकि आंशिक शुद्धता हुई, दूसरे दूसरे गुण में श्रद्धा गुण पूरा शुद्ध हो गया, चाहे उपशम संयम दर्शन हो, क्षेत्र हो, परोक्षायक हो, श्रद्धान का जो रस है उसमें कोई फर्क नहीं, अपने विषय में भी फर्क नहीं है, श्रद्धान का विषय भी एक सा है, उसका रस भी एक सा है, दूसरे सद्गुण आंशिक शुद्धत्व रूप परिणमा है, सर्वगुणान सम्यक्त्व अनंत गुण, तो उसमें जो अशुद्ध परिणमन करने वाले गुण है उसमें दो भाव हो गए, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो मुख्य गुण का विचार करें, ज्ञान चारित्र पुरुषार्थ सुख, तो उसमें सब में दो भाव है, सुख ज्यादा है दुख कम है, पुरुषार्थ अपने और ज्यादा है, बाहर में जाता है वो कम पुरुषार्थ है, उपयोग लगता है तो पुरुषार्थ भी बाहर जाता है, ऐसे ज्ञान में उपयोग बाहर जाता है, लब्ध अंदर में रहता है, चारित्र में विकरागता भी है और सरागता भी है, दोनों बातें तो शुद्धोपयोग काल में भी सरागता तो है, लेकिन यह बुद्धि पूर्वक है, सर्वथा वितराग तो है नहीं, पूर्ण वितराग तो शुद्धोपयोग के काल में भी नहीं है, सम्यक दृष्टि वहां भी दो बात है, लेकिन यह बुद्धि पूर्वक है, इतनी बात है। तो ऐसे दो भाग भाव में हो जाते हैं,
में जो ये दो पड़ा है इसको और थोड़ा थोड़ा
सा, उसमें क्या है कि अपन दृष्टांत ले, वो जानकारी का दृष्टांत ले सकते हैं, तो जैसे इधर शास्त्र का उपयोग चलता है अपना स्वाध्याय का, तो उस वक्त अपना जो व्यवसाय संबंधित ज्ञान है, जो लौकिक पढ़ाई का ज्ञान है, गणित आदि का, इतिहास का, भूगोल का, भाषा का, क्या वो चला गया क्या, उसका नाश हो गया क्या, वो लब्ध में प्राप्त है, उसका उपयोग नहीं है, लेकिन वो लब्ध है, प्राप्त है। क्या होता है कि उपयोग में जागृति होने से उपयोग बराबर बुद्धि गम्य होता है। तो इंद्रिय ज्ञान वाली चीज है इसलिए, और जो अतिंद्रिय है उसका वो ज्ञान में नहीं आती चीज है, क्योंकि अकेला इंद्रिय ज्ञान ही प्रकट हुआ है इसलिए, तो उसका जो वेदन है वो उसका पता नहीं चलता है। जैसे एक आदमी को दर्द होता है फिर भी उनके पास इलाज करने के पूरे पैसे हैं, चाहे तो अमेरिका जा सकता है, तो उसको दर्द का दुख भी है और इलाज करने के लिए उनके पास एक वेदन भी है कि नहीं मेरे पास जो संपत्ति उसका मैं प्रयोग करूंगा, किस काम के है अभी तो उसका काम आएगी वो चीज। और जिसको पास दोनों नहीं है, सुख भी नहीं है, दर्द का दुख भी है और संपत्ति का दुख भी है कि क्या करें, रोग तो बड़ा हो गया लेकिन हमारे पास इलाज करने के कोई पैसे भी नहीं, तो वो जितना दुखी है उतना वो दुखी है क्या? वेदन से
यद्यपि इलाज कोई, यद्यपि उस समय इलाज कोई नहीं करा रहा है, बस उसके पास पैसे हैं, उसके पास नहीं है।
तो उसको पास जो जिसके पास पैसा है उनको एक औथ है, उसको मुंह है कि मैं तो उसका इलाज करा के उसको दूर कर दूं, तो उनको जो वेदन है उसमें फर्क है, सुख दुख की परिस्थिति में जो वेदन है उसका फर्क पड़ता है। अब जिसको कोई वो जो लाचार है, निसहाय है, वो बहुत दुखी होता है कि क्या करे, दर्द है, पैसे नहीं, करे भी क्या, मर जाएंगे हम पैसे, तो में बहुत फर्क है। ऐसे
वो इलाज करा लेता है, कराता है, उस समय का उसका इस समय का उसमें तो अंतर है ही है,
अंतर तो है
उसी एक ही व्यक्ति को इलाज करा ले वो अपने पैसे का उपयोग करके, उस समय जो उसको सुख का वेदन हो,
सुख का
और तो इस समय है उसमें अंतर।
हाँ वो तो है, तो वो इलाज चालू हो गया, प्रयोग चालू हो गया, तो फर्क इससे जैसे उपयोग चालू होता है और लब्ध है उसमें फर्क तो है। उपयोग में आनंद है वो उभर के बाहर आता है,
ये
पर निर्जरा भी ज्यादा है इस वक्त, क्यों कि जो बुद्धिपूर्वक का जो राग है वो वहां समाप्त हो गया, बंद हो गया, तो ये बंद था, प्रतिबंध था, रुकावट थी, वो नहीं रही वहां उस वक्त। शुद्धोपयोग के काल में रुकावट नहीं रही, तो बंध तो हट गया इस वक्त, बुद्धिपूर्वक के जो राग से बंध होता था वो, और एक ही वितरागता हो गई चारित्र में शुद्धोपयोग से विशेष, वहां निर्जरा भी विशेष है, ये बात जरूर है, लेकिन वेदन है दोनों में फर्क तो है लेकिन सर्वथा नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कहते कभी।
इसीलिए वहां जो प्रश्न उठाया वो ऐसे उठाया कि अधिक आनंद क्यों आता है, तो प्रश्न से ही मालूम पड़ता है कि सर्वकल में आनंद तो है, प्रश्न से ऐसा मतलब मालूम पड़ता है, लेकिन सवाल ही आनंद का प्रश्न पूछता है।
अगर सर्वथा नहीं हो तो मान लेकर तर्क करें अपन कि सर्वथा नहीं हो तो क्या इसका आनंद गुण पूरा अशुद्ध परिणाम रहा है क्या,
वो कहते हैं
तो उसको सर्वगुण सम्यक तो कह सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकता। जब अनंत गुण शुद्ध हुए, सारा द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमन करने लगा आंशिक रूप में, तो आनंद गुण बाकी रह गया, ज्ञान गुण बाकी रह गया, कौन सा गुण बाकी रह गया कि जो शुद्धात्मा के साथ संलग्न नहीं हो, जुड़ा हुआ नहीं हो, ऐसा कौन सा गुण का परिणमन बाकी रहता है? एक भी गुण का नहीं रह सकता। अगर ऐसा हो जाए तो द्रव्य की अखंडता और अखंडता नहीं रह
सकती। प्रगटता तो स्वीकार है लेकिन उसमें उसका वेदन होना
वेदकता चली जाती है क्या?
ज्ञान में आना
वेदकता चली जाती है क्या? अच्छा अपन अभी बात करें कि अंतर सुख रस घटाकर तो क्या
दुपयोग के काल की बात
है? यस नहीं 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 दुपयोग तो बहुत कुछ ही आता है, चतुर्थ संस्थान से आगे तो होता ही नहीं। नर्क में
करके कथन कर दिया
नर्क में चतुर्थ संस्थान से आगे तो कोई पंचम संस्थान तो होता ही नहीं,
कभी कभी होता है
तो उसमें तो बहुत काल में होता है, लंबा काल में होता है। तो इतना साधना का कोई अनुकूल संयोग भी नहीं है ध्यान लगा के बैठ सके। फिर भी अंतर सुख से घटा के लब्ध के शुद्धोपयोग की व्याप्ति नहीं है सम्यक दर्शन के साथ, लेकिन लब्ध की व्याप्ति है हमेशा निरंतर सम्यक दर्शन के साथ अविनाभावी रूप से रहते हैं। वो ज्ञान चेतना है, अगर ज्ञान चेतना चली गई, ज्ञान चेतना किसको कहें? चेतना मैंने क्या अनुभव करना, ज्ञान अपना स्वरूप का अनुभव करे उसको तो ज्ञान चेतना कहते हैं। ज्ञान चेतना नहीं हो तो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बाद साधक नहीं रहता, ये बात हो जाती। तो चेतना में नहीं अनुभव करना तो ज्ञान चेतना तो निरंतर वर्तित है, भेद ज्ञान उनको निरंतर वर्तता है, भिन्न पर पड़ गया है वो तो अंदर।
के लिए एक छोटा सा दृष्टांत सुन रखा है, वो हमारे समझ में नहीं आ रहा। जैसे खट्टी मीठी गोलियां मुंह में रखनी, खट्टी मीठी गोलियां, और उसका रस जा रहा है और हमारा उपयोग दूसरी तरफ चला गया। रस तो जा रहा है लेकिन उपयोग दूसरी तरफ होने के कारण अब उस रस का आनंद नहीं है। रस तो जा रहा है बराबर, लेकिन उपयोग हमारा दूसरी जगह लग गया किसी और तरफ, तो वो खट्टी मीठी गोलियों का जो आनंद है उसका मुझे पता नहीं चल रहा, रस तो जा रहा है। तो ये बात इसमें कहां तक फिट बैठती
है? उसमें ऐसा है, ये थोड़ा जो दृष्टांत है उसमें अकेले उपयोग को ही ज्ञान की पर्याय मान ली है और प्राय ऐसा ही है समझ में। लोग शास्त्र पढ़ते हुए भी उपयोग को ही समझते हैं, लब्ध को समझते नहीं। ज्ञान की पर्याय में छदमस्त जीव को केवल ज्ञान नहीं हुए, जिसको मति स्मृत दो ही ज्ञान हुए, उसके ज्ञान की पर्याय में चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, दो भाव रहते ही हैं, एक लब्ध और एक उपयोग। तो लब्ध को लोग नहीं जानते नहीं समझते क्योंकि ये विषय ज्यादा सूक्ष्म है और जागृति वहां है ही नहीं, जागृति उपयोग में ही होगा। अब कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद जागृति लब्ध में है उपयोग में नहीं, दूसरी बात है सर्विकल्प दशा में भी इनकी जागृति लब्ध में है उपयोग में नहीं, ये बात है। हाँ ऐसी भी दिशा होती है, किसी के प्रति अनहद प्रेम होने से अनहद राग होने से इस विषय की जागृति रहती है,
उसका उपयोग
उपयोग कहीं भी चले
तो राग उससे अनहद है,
अनहद राग होने से ऊपर ऊपर के उपयोग से दूसरा काम वो करेगा
जागृति उसी,
और जागृति जो विषय में अनहद राग है वहां रहेगी।
उपयोग भी उसी में लगा हुआ है और बंदी भी उसी में लगा हुआ है।
नहीं नहीं लग, किस काल में ये एक दृष्टांत लेते हैं ना, ये तो अनुभव में आया इसी बात
में, ये बात तो ऐसी लग रही है जैसे अनंत प्रेम हुए तो बस उधर ही
उपयोग
जागृति में
कहीं जाए लेकिन वो
जागृति में ठीक है। वैसे दृष्टि हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वस्व रूप से उपाधि ये परमात्मा ही है, क्या पूरा का पूरा सर्वस्व ये उपाधि मेरी परम तत्व ही है, इससे अधिक विश्व में कोई चीज नहीं। तो वहां उतनी जागृति आ जाती है ज्ञान चेतना से कि उपयोग बाहर जावे तो बेकार, इसका उपयोग बाहर जावे तो बेकार होता है। अब दूसरा दृष्टांत ले लेते हैं कि यहां शास्त्र का स्वाध्याय में उपयोग लगाते हैं, कहते हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है। क्या उपयोग में लेते हैं बात?
आनंद स्वरूप
कि आत्मा अनंत आनंद से भरा हुआ मेरा स्वरूप है, ऐसा उपयोग करें। आता है आनंद क्या? क्यों नहीं आता है? आनंद नहीं आता है उपयोग ऐसे लगाने पर भी कि ये जो वेदन है तो लब्ध में दूसरा पड़ा है
संसार का,
संसार के विषय का जागृति नाम है हमारी, तो ये उपयोग बेकार जाता है। आत्मा आनंद स्वरूप है, ये उपयोग वहां बेकार जाता है और लब्ध की सफलता है। ऐसी सम्यक दृष्टि को वो उपयोग बेकार जाता है, चाहे लड़ाई में लड़ता हो।
ये अनुभव का दृष्टांत
होगा, दृष्टांत तो अनुभव का ही है ना, जब से पूरा ख्याल आ जाता है। तो ऐसे लब्ध बलवान है मिथ्या दृष्टि को भी लब्ध का बलवान पड़ा है, उपयोग का इतना नहीं है। पर शुद्ध उपयोग के काल में उपयोग भी बलवान है, निर्जरा विशेष है,
डबल वर्क।
तो उसमें क्या है कि कब किसकी बलवत्तरता है, बलवानपना कब किसका है, इसका अगर हिसाब किताब देखें तो जहां जिसका रस तीव्र हो जाता है वहां बल है। इसलिए शास्त्र में अनुभवियों ने परिणाम में रस का जो फैक्टर है उसको परिणाम की शक्ति बताई है। क्या
रस जो फैक्टर है परिणाम में, तो परिणाम
की शक्ति बताई है। और सारा जो परिणाम का दौर है वो रस के दौरान चलता है, जैसे समय सारा पड़े बंद अधिकार में क्या कहेंगे आचार्य महाराज? बंद अधिकार स्वरूप करते हैं तो राग रस है वही बंद तत्व है, राग को बंद तत्व नहीं कहा, राग रस को बंद तत्व कहा है। समय सारा पहला कलश है
परिणाम के रस को,
परिणाम के रस को तत्व बताया है, इसका तत्व है वो पणा, तत्पणा, तत्पणा पुष्प। राग उद्गार महारसेन ऐसा शब्द लिया है संस्कृत में अमृतचंद्राचार्य ने, पहला ही शब्द ये लिया है बंद अधिकार में। राग उद्गार महारसेन सकलम कृतवा प्रमत्तम जगत, सारे जगत को, सकल जगत को प्रमत्त मैंने पागल बना दिया। किसने बनाया? राग उद्गार महारसेन, राग का महारस जो है इससे सारा जगत पागल है, प्रमत हो गया है, पागल हो गया है। तो ये जो रस है उसका बलवान पड़ा है, परिणाम में कोई शक्ति है तो रस की है। इसलिए पंचायत अधिकार ने बहुत बड़ी बात की है कि चाहे सम्यक दर्शन उपशम हो, क्षयोपशम हो या क्षायिक हो, तीनों में श्रद्धा गुण का जो परिणाम का रस है वो एक सा है। प्रकृति अलग अलग है, रस अलग अलग नहीं है।
निमित्त निमित्त एक संबंध नहीं रहेगा फिर? निमित्त निमित्त एक संबंध क्या रहा परिणामों का प्रकृति
का? प्रकृति का निमित्त निमित्त एक संबंध जो है वो तो अपने आप में है, लेकिन प्रकृति का एक फैक्टर है, रस का दूसरा फैक्टर है। तो उनको रस का फैक्टर प्रधानतया समझना है। तो जब उपयोग में रस बढ़ता है तो उपयोग के बलवान खड़ा होते हैं। जैसे अनादि को, अनादि का संस्कार जो लब्ध में है वो मिथ्यात्व और संसार का है, फिर भी उपयोग जोर करता है तब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन कब होता है?
उपयोग जोर,
उपयोग से चालू होता है। गुणस्थान भी शुद्धोपयोग में बदलता है हमेशा, लब्ध में पलटता नहीं। लब्ध के काल में प्रलता नहीं, शुद्धोपयोग के काल में ही प्रकार स्थान में जाते हैं।
यद्यपि जागृति तो रहती है लब्ध में भी, यद्यपि जागृति तो लब्ध में भी रहती है,
रहती
तो भी गुणस्थान नहीं
पलटता, नहीं पलटता है। इतना रस नहीं है वहां जितना शुद्धोपयोग के काल में आ जाए। तो क्या है कि जब ऊपर के गुरु स्थान में कोई जाता है, उस धोबी गुरु ध्यानस्थ अवस्था के काल में जाता है, उस काल में वो बुद्धिपूर्वक के राग का प्रतिबंध को भी हटाता है, उतना जोर से उतना रस से वो पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है, तब काम होता है। तो जागृति होती है, फिर भी उपयोग और लब्ध का ताकत का हिसाब किताब देखें तो रस जिसमें अधिक हो इसका बलवान बना है, तो उपयोग बाहर निकलता है उसमें रस नहीं है। निर्जरा अधिकार कलश का देखो तो उसमें करीब 9-10 शब्द का प्रयोग किया है कि सम्यक दृष्टि के परिणाम रूखे होते हैं, सम्यक दृष्टि के बाहर के परिणाम निरस होते हैं, संसार सम्यक दृष्टि की अन्य प्रवृत्ति के परिणाम में अस्तित्व ही छूट गया है, यानी वहां अपना अस्तित्व खिसक गया है, वो अपना अपनत्व रहता ही नहीं, ममत्व नहीं रहता है, ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग किया है। ये सब बताते हैं कि उसका उपयोग बाहर जाते हुए भी वहां खाली बिल्कुल खालीपन है, उपयोग रहित चक्षु जैसे देखो, आंख खुली हो तो उपयोग भी नहीं देखता है, ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, बहुत ऊपर ऊपर से होती है। तो ये बात भी जागृति से समझ सकते हैं कि जागृति कहाँ है, और वर्तमान परिस्थिति से भी समझ सकते हैं कि उपयोग कितना काम करता है, लब्ध कितना काम करता है। पंचाध्याय में बहुत चर्चा की इस विषय की,
अध्याय प्रश्न वगैरह आप बता देना।
हाँ, सब कथा माता देख लेंगे घर। संकृति को एक भी अपेक्षा से अनंत संसार का कारण नहीं है, अनंत संसार का बंध नहीं है,
कोई भी अपेक्षा,
कोई अपेक्षा से नहीं है, फिर भी बंध गिनती के हिसाब से, गणित के हिसाब से नहीं है, ऐसा एकांत नहीं है, अल्प बंध होता है, वो जानकारी का विषय। जानना और जो विषय जानने में आवे उसको कितना महत्व देना है, ये दो अलग अलग बात है। जानना सहज होता है क्योंकि जानने का स्वभाव है, सूक्ष्म होने से सहज जानना होता है, लेकिन वजन देने में विवेक का सवाल पैदा होता है। जानने रूप घर तो संगी पंचेंद्रिय हरेक को होता है, लेकिन विवेक एक सा नहीं होता है हर एक को, विवेक दूसरी चीज है उसका। अंदर में शुद्ध स्वरूप की दृष्टि और अनुभव होने पर भी सम्यक दृष्टि को अब भी आसक्ति है, इसलिए दुख रूप लगता है, चारित्रों की आसक्ति है, अन्य विषय प्रति उसका उपयोग जाता है और उसमें उसको सुख नहीं लगता है, दुख लगता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में कोई बड़ा अंतर है तो उतना है कि मिथ्या दृष्टि का उपयोग पर विषय में जाता है, ये सुखानुभव करता है, जिसको ज्ञानी सुखाभास कहते हैं, वो तो वास्तव में सुख मान लेता है, बस वास्तव में सुख का अनुभव करता है, ऐसा उनको परिणाम वर्तता है, जबकि ज्ञानी को उस वक्त दुख होता है, सुख नहीं लगता है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है, उल्टा सुलटा।
इसका कारण उपयोग पर में जाना वो है नहीं है।
किसका
दुख लगने का,
दुख लगने का कारण तो ये निमित्त से है, उपादान से तो परिणाम में सुख गुण की उल्टी अवस्था हुई, एक गुण भेद से लेने तो, और उपयोग उसमें निमित्त पड़ता है, उपयोग बाहर जाना वो स्वभाव नहीं है, पर पदार्थ को जाने में विभाग नहीं है, लेकिन उपयोग को बाहर ले जा करके जाने वो विभाग है ज्ञान का, दो में अंतर है। पर पदार्थ का ज्ञान में प्रतिबिंब होवे वो तो स्वपर प्रकाश ज्ञान का स्वभाव है, ये दोष नहीं है, वो विभाग नहीं है। लेकिन उपयोग से अवलंबन करें और अवलंबन करके जाने पर सन्मुख होकर के जाने, ये विभाग है ज्ञान का।
इसमें दुख है,
नियम से होवे ही होवे सारे, ऐसा होने से दुख, ऊपर को जानने से दुख नहीं होता है, लेकिन उपयोग को संक्रमण कर देवे उससे दुख होता है, वो संक्रांति का दुख है, उसको शास्त्र में संक्रांति कहते हैं, उपयोग की संक्रांति, या प्रवचन सार में उसको नक्ति परिवर्तन क्रिया कहते हैं, नक्ति परिवर्तन, परिवर्तन होता है, एक गेय से दूसरा गेय के प्रति उपयोग जाता है तो विभाव होता है, चारित्र गुण में कषाय लाभ होता है और ज्ञान में विभाव होता है, कषाय ज्ञान में नहीं होता है, वो चारित्र का परिणाम है,
दुख का जो है वो तो चारित्र
दुख का है, वो सुख गुण में विशेषता आती है, तो साथ ही साथ होवे ही विभाव होवे तो सुख में दुख, सुख गुण दुख रूप होवे ही होवे, नियम से बात है। वो ज्ञानी को दुख रूप लगता है और दुख रूप है इसलिए दुख रूप लगता है,
बराबर,
और अज्ञानी को सुख की कल्पना हुई है इसलिए दुख रूप होने पर भी सुख रूप लगता है उसको, लेकिन वास्तविकता तो छिपी नहीं रहती, तो उसको थकान आती है वहां अज्ञानी, क्योंकि वास्तविक तो दुख ही है, तो सुख की कल्पना है कुछ काल तक चालू रहती है, फिर वो कल्पना है, वो तो कल्पना है, कोई वास्तविकता तो थी नहीं वहां, इसलिए वो कल्पना का मिलन हो जाता है और वास्तविक दुख खड़ा हो जाता है, और उसी काल में भी उनकी जो अभिलाषा है, इच्छा है कि ये चीज हमें मिल जाए तो हमको सुख मिले, तो मिलने पर भी उसको तृप्ति नहीं होती, तृप्ति का दुख तो उसको रहेगा ही रहेगा, ये बात भी जरूर है, तो तृप्ति इसलिए नहीं होती कि एक द्रव से दूसरा द्रव मिलता नहीं कभी, जीव द्रव को दूसरा द्रव तो कभी मिलता नहीं है, अपने आप में आता नहीं, तो तृप्ति होने का सवाल नहीं, उसको तो मिले तो तृप्ति हुए, तो मिली तो नहीं, मान लिया तो मिल गई लेकिन मिली तो ठीक नहीं, इसलिए तृप्ति नहीं होती, तृप्ति नहीं होती तो अतृप्ति का दुख रहेगा ही रहेगा,
दोनों की दुख की जाति में भी अंतर हो गया, ज्ञानी अज्ञानी के
दुख की जाति में तो बहुत अंतर है, एकत्व का दुख तो अनंत है, एकत्व बुद्धि में तो अनंत दुख है, पर के राग से एकत्व बुद्धि में अनंत दुख है, तो उसमें बहुत अल्प है, इसकी मात्रा में ज्ञानी को तो बहुत अल्प दुख है, बहुत अल्प है, काफी बहुत बड़ा अंतर है, उसमें तो काफी अंतर है, पड़ोसी पर अनुराग होता है कि अपने पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी की मां भी मर जाए और अपनी भी मां मर जाए, क्या सरेखा दुख लगता है क्या, मित्र हो गए उन्हें भी फर्क है, एक में अपनत्व है एक में अपनत्व नहीं है, वो तो उनकी मां है, बस बात खत्म हो गई, अनुराग होने से थोड़ा बहुत लगता है, साथ में जुड़ता है, वो भी स्मशान जाता है, वो भी जाता है, वो भी साथ में आता है, बैठता है, सब करते
हैं,
उसमें तो एकत्व कर लिया, मिथ्या दृष्टि तो एकत्व करता है, पूरा का पूरा जो उलझता है, और दूसरा तो सावधान रहता है, इंतर में जागृति है, मैं तो भिन्न हूं, ऐसी जो जागृति रह गई बस बात खत्म हो गई, जहां ममत्व नहीं है वहां दुख नहीं, सीधी बात है, दुख कहां है कि जहां ममत्व है वहां दुख है, तो सीधी बात है, चारित्र की जितनी आसक्ति है तो अंदर में शुद्ध स्वरूप की दृष्टि और अनुभव होने पर भी, दृष्टि और अनुभव, ये अनुभव कौन सा लिया, शुद्ध उपयोग वाला तो है नहीं, दृष्टि और अनुभव दोनों है अंदर में, ज्ञान से इतना का अनुभव है,
लब्धि से जो
हाँ उसको अनुभूति भी कहते हैं, द्रव्योग को भी अनुभूति कहते हैं और उसको भी अनुभूति कहते हैं, उसको ज्ञान धारा कहते हैं, निर्जरा का कारण कहते हैं, ज्ञान धारा से निर्जरा है,
ज्ञान धारा निरंतर है,
निरंतर
ये नहीं खाली शुद्ध उपयोग नहीं ज्ञान धारा हो,
ऐसा नहीं, ज्ञान धारा निरंतर है,
निरंतर नहीं है तो मिथ्या दृष्टि हो जाए,
हाँ मिथ्या दृष्टि हो जाए, ज्ञान धारा नहीं चले तो मिथ्या दृष्टि हो जाए, एक तो हो जाएगा ये ज्ञान धारा से तो भूलना पड़ा है, यही तो यह तो सुनी दृष्टि की अंतरंग दशा है, मूल दशा तो ये ज्ञान धारा वाली है, उपयोग वाली जो है मूल दशा नहीं है, वो तो उत्तर दशाएं हैं इनकी, तो इनकी जो पहचान है सम्यक दृष्टि की
ज्ञान धारा,
वो ज्ञान धारा से होती है, जो सम्यक दृष्टि के हृदय तक पहुंचे तो उनको ये पता चलेगा कि उनको तो ज्ञान धारा चलती है, और ज्ञान धारा का विषय कौन है, कि ज्ञान धारा का विषय तो परमात्मा है, परम स्वरूप है, तो उसको अकेली ज्ञान धारा नहीं दिखती, ज्ञान धारा का विषय भी तो परमात्मा तत्व का दर्शन उसको वहां होता है, इसलिए ज्ञानी को परमात्मा कहा, ज्ञानी को परमात्मा कहा है। अमृत चंद्राचार्य ने 143 गाथा की टीका में ये बात कही कि पक्षाद्विक्रांत हुआ, पक्षांतिक्रांत होकर के सुधोपयोग शुद्ध निश्चय स्वरूप का जो विकल्प का पक्ष छोड़ करके निर्विकल्प हुआ तो वो ज्ञानात्मा है, वो परात्मा है, वो परमात्मा है,
वही समझ
वही समझा है, ऐसा समझ लिया है, तो हमने दंशन बोलो तुम सब बात ली आधार लिया है आचार्य।
वो तो शुद्धोपयोग के समय का वर्णन है,
शुद्धोपयोग के समय का वर्णन है, फिर वो ये वर्णन भी शास्त्र में आता है, लब्धवाला निर्जराधिकार क्यों कही, ज्ञानी के योग निर्जरा के हेतु है, यहां से तो प्रारंभ किया, और थोड़ा जैसा सिर पे कोई लगा दे और चक्कर खा जाए ऐसी बात है, ये क्या कहते वो योग निर्जरा का हेतु, ये तो पापबद्ध का कारण होता है, चाहे ज्ञानी का हो चाहे अज्ञानी का हो, भोग तो पापबंध का कारण है, और यहाँ आचार्य महाराज खुद कहते हैं कि निर्जरा का कारण है, तो कोई समझदार है विचक्षण है उसको तो लाइट होनी चाहिए कि कोई बात कोई विशिष्ट है जिसमें सारे जगत के साधारण प्राणी स्थूल बुद्धि वाले भी जानते हैं कि भोग से पापबंधता है, ये तो स्थूल बुद्धि वाले भी जानते हैं, जब आचार्य महाराज कुंद कुंद आचार्य कहें कि ये भोग निर्जरा का हेतु है तो कोई बात इसमें कोई अलौकिक होगी, ये तो लौकिक बात में सब जानते हैं, तो कोई बात बताना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं,
मर्म है
कुछ, मर्म है इसके पीछे, रहस्य है, तो इस रहस्य को खोला है कि उनको परिणति चलती है, निर्जरा होती है, जागृति उनकी मां है, भोग के उपयोग में जागृति नहीं है उनकी, ये बात शास्त्र में आती है, अकेली उपयोग की आती ऐसे नहीं है, इनकी भी आती है, ज्ञान धारा की बात काफी चली है, ये ज्ञानी का वर्णन ही इसलिए है, ज्ञान दृष्टा का वर्णन जो आता है गुरुदेव के प्रवचन में अलग अलग पहलू से आता है, उसमें मूल बात यह कि इसकी अंतरंग परिणति की पहचान करने से इसका पता चलता है, और तब ही ज्ञानी को पहचान करने से ही पहचान करने वाले को ऐसी दशा की संप्राप्ति आगे जाके हो जाती है, यही कारण है, इसका फल ये है। तो उनको दुख लगता है, रुचि को रुचि और दृष्टि अपेक्षा से भगवान आत्मा को अमृत स्वरूप आनंद का सागर है, रुचि का विषय भूत और दृष्टि का विषय भूत जो भगवान आत्मा है वो तो अकेला अनंत आनंद अमृत का सागर है, आत्मा का खुद ही अमृत सरोवर है जिसमें आनंद की ही लहर उठे, ऐसा आत्मा है, उसका नमूना मैंने सैंपल, वो क्या कहते हैं, वानगी कहते हैं हिंदी में, वानगी कहते हैं, वानगी कहते हैं,
नमूना भी
नमूना कहते हैं, उसका नमूना, नमूने का वेदन आगे शुभ और अशुभ राग दोनों दुख रूप लगता है। देखो कहां मिलान किया, शुभ और अशुभ राग होते वक्त वो दुख रूप लगता है। कब दुख रूप लगता है कि जब वो पैदा होता है तो दुख रूप लगता है। उस वक्त वो दुख रूप क्यों लगता है कि ये जो आनंद का नमूना है, आनंद उपलब्ध है, आनंद प्राप्त है, उसके आगे वो दुख रूप लगता है। अगर वो भी हो तो दुख रूप नहीं लगे।
ऐसा नहीं कि वो आनंद प्राप्त
हुआ है
इसलिए दुख रूप लगता है, वो भारी है, वो बात ये बात है। भाई साहब ये कह रहे हैं कि पहले आनंद हो गया था, इसलिए जब तक उनको सुबह शुभ भाव होते हैं तो मिलान करता है कि मेरा आनंद तो ऐसा था, इसलिए वो दुख रूप उसको लगता है। ऐसा नहीं, अभी परिणति में आनंद का वेदन है, उसके आगे आगे मैंने मिलान करने से उसको शुभ और अशुभ भाव दुख रूप लगते हैं। एक दृष्टांत लिया है सुगानी जी ने, तो इंद्र का दृष्टांत लिया है, सौधर्म इंद्र जो पहला विमान है धर्मेंद्र का, और सबसे मनुष्य लोग से वो नजदीक है सबसे, जो लोग तो वो आता है तीर्थंकरों के जन्म कल्याण मनाने के लिए, और उनका आयु बहुत है साधुओं का, तो असंख्य तीर्थंकरों का वो तो एक इंद्र है, वो उसको योग होता है उत्सव मनाने का, तो हर्षान्वित होकर के नाचता है। लोग समझते हैं कि उनको बहुत सुख है, बहुत हर्ष है भगवान के जन्मोत्सव का, लेकिन भीतर में उस काल में उसको दुख जानता है,
खेद
है, और दुख कब जानता है कि उसको परिणति है, उसके साथ उसका मिलान है, तब दुख जानता है। उसी वक्त जानता है जब पैदा होता है शुभ भाव, तभी उसको दुख जानता है। उस वक्त मिलान किससे करे, वो विचार करेगा शुभ भाव, सुबह शुभ भाव तो निरंतर चलता है, तो एक एक भाव के साथ उधर स्मृति करने जावे शुद्ध उपयोग के भूतकाल की, क्या है विचार करे इतना लंबा है, ये संभव है क्या? एक एक विकल्प का, एक एक शुभ भाव में ये स्मरण करते जाए, ये कोई संभव है, प्रैक्टिकल बात है क्या? ऐसी तो स्मृति किसी को नहीं रह सकती, रह ही नहीं सके। स्मृति तो विस्मृति के साथ ही होती है हमेशा, स्मृति विस्मृति का जो द्वंद है वो हमेशा विस्मृति के साथ रहती है। इसलिए इसका दूसरा पहलू है, दूसरे साथ एक सिक्का का दो बाजू है स्मृति विस्मृति, तो हर वक्त ये संभव नहीं है, किससे मिलान करेगा?
लेकिन वो लब्धि में है, इतना तो सीखा
है,
वो लब्धि में है,
लब्धि में है, तो वो भी प्रकट रूप है, लब्ध में कोई अप्रकट बात नहीं, प्रकट है, तो उसके साथ उसका मिलान हो जाता है। ये सुख है, ये दुख है, ये दुख है, सुख है, अनुभव आता है उसका, दोनों का अनुभव है, सुख और दुख दोनों का अनुभव है। मुख्य वृत्ति सुख रूप है, गौण वृत्ति दुख रूप है, ऐसी बात है। वो पत्र मिलिया है सुबह नहीं मिला, इस बात को पत्र मिलिया है, अभिप्राय में तो बता दिया, अभिप्राय में तो वो जहर और काला सर्प दिखता है,
दिखता है,
लेकिन यहाँ तो बात की है कि चालू परिणाम में क्या है, चालू परिणाम में तो दोनों बात है, एक ये भी वृत्ति है और एक ये भी वृत्ति है, दोनों वृत्ति है उनको। 33 नंबर का पत्र है, वृत्ति अपेक्षा धर्मी की वृत्ति अपेक्षा त्रिकाल की मुख्यता जिसको वर्तती है, ऐसे धर्मी को सहज ही इस मुख्य आश्रित वृत्ति की ही मुख्यता रहती है, वर्तती है, चाहे बाह्य अंश में बुद्धिपूर्वक किसी भी राग की प्रवृत्ति हो, भगवान की भक्ति की, आरती की, पूजा की कोई भी प्रवृत्ति हो, लेकिन वो गौण है, मैंने दुख वृत्ति गौण है, सुख वृत्ति मुख्य है, और जागृति वहां रहती है, मुख्यता है वहीं जागृति होती
है। यहां तक करते हैं।